पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अभी इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रख्या। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स उस काल ने कहा, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने छठा अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का, सातवां, ये सातवां अध्याय 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनके उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया, कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व उपराव ने सच्चाई छानी ना। अब यहां आपको हम विद्वेश्वर संहिता इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप, विष्णु जी को, विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तू मेरे नाम भी कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजा पिता हूं, इन नसु की फीत ला रहे थे आप पे। इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा लड़का मरेंगे और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए, इनके बीच में एक सतम एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजो में, बहुत बहुत ही विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के तो आपने खूब पढ़ रखी, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझान। देखिएगा ये है, ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के, और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़ें, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है, पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से, सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए, ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, युमे नहीं है, ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहता था, दो पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से, अन्यों का दो और है मेरे बेटे रुद्र और महेश्वर, तो हो गए चार। और पांचवा बोल रहे, अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहां एक थोड़ा सा और रह गया, इसे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन, अब यहां 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा, अब 26 पर हम पढ़ रहे थे यही, इसके विद्वेश्वर संहिता का यहां पर हम पढ़ रहे थे नीचे, पुत्रो, यहां पर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है वो ओम मंत्र है जिसका जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है, ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु में, इसका ये सदाशिव है, इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं, अध्याय 8 श्रीमद भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम नथिंग एल्स। विहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे ये तीनों का मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करता हूं जो शरीर छोड़कर जाता हूं ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूं। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है, ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है, जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है। अर्जुन जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है, अर्जुन उनका पुनर्जन्म है, इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12 न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इस आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसके साथ ही देखना है, इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे, अविनाशी यानी नाश नहीं कहो, अविनाशी को, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता, इसका यहां ये पांचवा मंत्र यहां से स्टार्ट है लेकिन इसका अनुवाद यहां पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इति सिद्धम, गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूं। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत माने कि ब्रह्म लोक में गए वे सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर दिन मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीनों। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका पुनर्जन्म, अर्जुन उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है वो ब्रह्म लोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, वही गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे। एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंद। यहां हम आ जाते हैं, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबसे के अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है, वह है परम सत्य। या काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे, वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर बेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए, इसका सिद्ध यह सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहां रहता है? वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्म लोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म लोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सचिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाणी की जानकारी है, उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है पीपल का वृक्ष, समझो ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सब विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई है, अपनी मुखारविंद से बोली अमृतवाणी, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में लिखा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। तीन देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, स्पष्ट हुआ अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको, अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी एक मान सिद्ध है, मान भगवान प्राप्ति के लिए हजारों को एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं, और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है करने का। और जो मुझे तत्व से जानता है, अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए, फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूं ब्रह्म लोक में, और इंद्र को कहने लगा कि आजा तुझे ब्रह्म लोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे तत्व मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा नहीं, तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। ये सारा इस सातवें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा इसी सातवें अध्याय का ये चौथा और पांचवा श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित, मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब छठे में कहा है ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात परलय का कारण हूं, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूं। अब हम यहां आ जाते हैं, अब हम ज्यादा ना पढ़े इसको, देख सातवें में क्या कहा कि अर्जुन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजों का तेज मैं ही हूं। और गर्म में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने और सारे यादव लड़के मर गए कटके जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार, उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांप पाए, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो, श्री कृष्ण दोषी नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहा है। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन ठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको जो विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेना आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने, और तुरंत पहचान ली कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन ठा लेगा, उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का, ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था यो। अब सातवें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतान उत्पत्ति करने के लिए, कवश की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सब आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा सहार तमोगुण से, शंकर जी से, ये कहता है इसका नियमित मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, एक के गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके, जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चरचराट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुणयुक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं ही करता करवाता हूं, मैं खाता हूं, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दे। आगे देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जाता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूं ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर बजते हैं यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, ओए ओए। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच नराधम नराधमा मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा, और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा? रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर ने पैर, नीचे ने सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग, भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर के रख्या करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे, कर न्यू कर दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी पुरी नागा कनपाड़े नाथ ये सारे के सारे दशनामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्मकड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा ने ठाका मार के ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय कालज्ञ अविनाशी सर्वेश्वर सबका मालिक अंतर्यामी पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि इस अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है। अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे 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 भगवान, हर पीछे पीछे पुजारी, दोनों जहां सौ की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ यहां खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुके नहीं अभी, 100 किलोमीटर तो रहे, मैं इतने दो बात कर लेता हूं। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूं। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मेरे डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूं, इस हाथ को ऐसे करो, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे करो। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहा था और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन उसका पल्स रेट सेट होया था। ये तो इन दो गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, उस समय ये सभी गिरीपुरी जितने भी ये त्रिगुण उपासक हैं अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, अगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का इन समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी, इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर, पीछे तागे वैष्णो जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फेरडो राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी इन लोगों में, गंगा का पानी मिला हुआ था, दो मिनट बाद से नहा लेते, वो नहा लो जबकि बिजली गिरी थी वह पर भी खत्म हुआ थी दो मिनट में। पर वो नाना नूना भी भूल गए, भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लायक गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदा हुए हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हाय हाय, कहते हैं हर पैड़ी हर हेत न जाने, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करें, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में, और ये जग में साधक वावे तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी यो ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
नमस्कार जी।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
नाम राहुल दास है जी।
सर कहाँ से आए आप?
मेरा गाँव पावड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से जी।
सर क्या काम करते हैं आप?
मैं TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे हूँ जी अभी।
सर संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी मैं और मेरे फादर मतलब सारे घर वाले ये मानते थे कि भगवान है और उसको उसका नाम लेते थे, बाकी कभी मतलब हनुमान जी की पूजा या शिव जी की पूजा कर लेते थे, एज सच किसी के पास नहीं जाते थे। गुरुओं को तो हम मानते नहीं थे, किसी भी संत को गुरु को, हमें लगता था ये सारे ही मतलब अपना बिजनेस है, इनका एक धंधा, वो बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स इट।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
ये बहुत बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मेरे चाचा जी जो हैं वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल पावड़ा के अंदर ही हिंदी टीचर है, और मेरे फादर भी वहीं पे SS मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो मेरे चाचा जी ने नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से, वो मतलब शास्त्रों वगैरह काफी अध्ययन किया करते थे, तो उन्होंने उस कारण से नाम ले लिया था सारी पढ़ करके कि संत रामपाल जी जो भी कह रहे हैं वो शास्त्र अनुसार कह रहे हैं और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो कहा करते थे हमें कि आप नाम ले लो, बट हम नहीं मानते थे, हमें मतलब सच्चाई, हमें ये लगता था कि कोई कमीशन के लिए कोई नए आए हैं, इन्हें अपना बिजनेस सेटअप करना तो उसलिए कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे फादर को सर्वाइकल और पैरालिसिस दोनों हो गई, और उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और जिंदल हॉस्पिटल दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोल दिया कि इसको आप कहीं भी ले जाओ ये ठीक नहीं होगा, इनकी एंड स्टेज है। तो उस स्टेज में मेरे फादर से मतलब खड़ा भी नहीं हुआ, मतलब हो सकते थे वो, तो 42-43 डेज ऐसे हो गए थे। तो एक दिन मैं उस टाइम अपनी बीटेक कर रहा था, सेकंड सेम में था, तो पापा जी की तबीयत मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई, हुआ कि अब गए। तो मेरे चाचा जी गांव से बाहर रहते हैं, तो हम गांव के अंदर ही रहते थे तब, तो मम्मी ने फोन किया चाचाओं की चलो कहीं ले चलते हैं एटलीस्ट, मतलब उनको बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत सीवियर पेन हो रहा था। तो बुलाया चाचा जी को, चाचा जी बोले चलो ठीक है इसको ले चलते हैं, लेकिन इसको उन्हीं डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे जिन्होंने इसको एक बार रिजेक्ट करके भेज दिया है, तो उनके पास कुछ है नहीं, तुम मेरे कहने से इनको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलवा दो, और वो भगवान है, वो चाहे सो कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो पापा जी बोले कि अब इस स्टेज में अगर ठीक कर देगा दिस मीन्स इज गुड, तो ये बिल्कुल 100% ट्रू थिंग है, अब मानो या न मानो। सुबह के 2:30 बजे का टाइम था, ये मार्च 2006 की बात है, संत रामपाल जी महाराज उस टाइम करोथा में थे, तो चाचा जी ने फोन किया कि जी ऐसे ऐसे बड़ा भाई है और मतलब बहुत ज्यादा उसका मतलब लास्ट स्टेज चल रही है, तो गुरुजियों की यही वर्डिंग थी कि बेटा ये इसी तरीके से आना था, ये अदरवाइज आने वाला नहीं था, और अब इसको फोन दे जल्दी। फोन लिया, इतनी बुरी मतलब इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी, पापा को रो रहे थे, और फोन लेते गुरुजी ने ये कहा खुश रहो बेटा, और सबके बीच में संत रामपाल जी जिसको जिसके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए, इतने जेल में डाला गया इस निकम्मे CM ने, आर्य समाजियों ने, और जिसको साधारण जय कहकर के रिजेक्ट कर दिया गया, जो 37 साल तक साधारण जय थी उनके अंदर ऐसी क्या पावर आ गई, वो संत रामपाल जी करौंथा बैठे हुए हमारे घर पे थे और मेरे पापा को आशीर्वाद देकर के ठीक कर दिया। बिल्कुल 110% सही बात है। जैसे ये आदमी ड्रामा कर रहा था, इसके कोई सर्वाइकल नहीं, कोई पैरालिसिस नहीं, और कहा बेटा खुश रह, तेरी आयु भगवान ने बढ़ा दी है, तेरे को इसी तरीके से शरण में लेना था। तो सारे मतलब अचंभित हो गए। तो चाचा जी ने बोला कि क्या देखा आपको? तो बोले भाई साधारण कपड़े के अंदर, बिल्कुल साधारण कुर्ते पजामे के अंदर और साफा गले में डाले हुए एक भोली सी शक्ल का आदमी था और वो मुझे दिखाई दिया है और वो आशीर्वाद कर रहा था। तो चाचा जी बोले पहचान लोगे आप? कहता हाँ मैं पहचान लूंगा। उससे पहले हमने कभी संत रामपाल जी को कभी नहीं देखा था, हम बिलीव ही नहीं करते थे इन संत के अंदर। तो चाचा जी फोटो लेके आए, तो एक फोटो जिसके अंदर गुरुजी ऐसे किए बैठे बिल्कुल भोली सी शक्ल में, उसको देखते पापा बोले यही थे वो संत। फिर उसके दो दिन बाद पापा फिर करौंथा आश्रम में आए और फिर नाम लिया। उसके बाद मैं बीटेक में था, मैं फिर घर पे आया तो ये तड़प हमें पहले ही थी कि भगवान नाम की कोई पावर है, वो है वास्तव में, बाकी और जितने भगवान हमें लगता था ये सारे है, कुछ न कुछ उसी के रूप होंगे, बट हमने ऐसी डेडिकेटेड किसी की भक्ति नहीं करते थे हम। उसके बाद मैंने भी नाम उपदेश लिया। ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर कैंपस प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में आ रही थी टीसीएस कंपनी और हमारे गुरुदेव तब जेल में थे, हम इतने नीच आदमी, उस टाइम भी हमने अरदास लगाई कि भगवान हमारा भला करो। और वो जेल में होते हुए भी उन्होंने कहा था बेटा सीधा जाते ही होगा, तू परमात्मा का नाम लेते जाना। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, नोएडा इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था, तो वो नहीं मानता था किसी को भी, बट इस चीज का वो भी गवाह है कि हम बाइक पे जा रहे थे तो हमारे गुरुजियों का जो शब्द है, हमारे पास कोई मतलब मोबाइल जो था मल्टी मीडिया नहीं था, उसके अंदर कोई गुरुजियों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, उसके बावजूद गुरुजियों की वाणी चल रही थी, तारंगे तैतीक सतगुरु तारंगे, तारंगे तैतीक सतगुरु तारंगे, गुरुजियों का वो शब्द कंटिन्यू नोएडा तक, फरीदाबाद से नोएडा तक बजता रहा। हमारे तीन इंटरव्यू थे, तीन राउंड थे इंटरव्यूज के अंदर, मेरा सिर्फ फर्स्ट राउंड हुआ और जाते ही जो लेडी बैठी थी इंटरव्यू पैनल के अंदर, उसने यही बोला बेटा आपको ज्वाइनिंग जो है वो त्रिवेंद्रम की मिलेगी, आप कर लोगे ना वहां पे। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया मेरे से और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे गुरुदेव जो है जेल से आए 2008 के अंदर, फिर पापा को स्टोन हो गया तो पापा बोले गुरुजी शरीर छूटेगा, तो गुरुजी बोले मैं ऐसे बैठा हूँ क्या, तेरा शरीर छूटेगा कोई बात है, तेरे कैसे छूटने दूंगा मैं शरीर? तो पापा बोले गुरुजी पथरी होगी। बोला बेटा डॉक्टर को दिखा ले। बोला भगवान आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है? तो हाथ लगाया था, बिल्कुल 100% सही है, मेरे पापा के पेट के हाथ लगाया, कहता जा बेटा आराम से, कुछ भी स्टोन उसका, फिर हमने एक्सरे वैक्सरे अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी को मतलब वेंस जो उनकी ब्लॉक हो गई थी, पिछले 15 सालों से बहुत दुखी थी, वो गुरुजियों के सामने अरदास की कि भगवान हम दुखी है, मेरा कहीं इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास से लेके किसी के पास। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति कर, भगवान चाहे सो कर सकता है, और उन्होंने वो किया, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद और आज अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए, हमारे घर कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। मैं खुद टीसीएस में हूँ, मेरी मिसेज जो है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और हमारी एक गुड़िया है, अभी 10 दिन पहले की बात है, कूलर घर पे चल रहा था तो उसकी जो जाली थी वो टूट गई थी, वो लगवाई नहीं थी, वो खेलते खेलते उसने हाथ दे दिया उस कूलर के अंदर, पापा अंदर बैठे हुए सारे घर वाले, तो एकदम बड़ी तेज आवाज हुई और वो रोने लगी, तो भाग के गए कि हाथ दे दिया, देखा तो उसके हाथ के खरोंच भी नहीं लगी हुई थी। तो बंदी छोड़ने का, ये मेरी बेटी है और तू मेरे बच्चे, बेटा भक्ति करो, तो इस परमात्मा के कहां तक गुण गए, और ऐसे परम पिता को, ऐसे परम संत को और उठा करके जेल में डाल दिया नीचों ने, ए भगवान हमारे लिए आप दुखी हो रहे हो, मालिक आपका कहां तक शुक्र गुजार करें हम, ए बंदी छोड़, ए गुरुदेव।
सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद इनके द्वारा बताई गई हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा, हर ग्रंथ को मैं उठा करके लाया, उसको अंदर देखा, پھر میں نے ہر چیز کو ملایا. اور میں یہی کہنا چاہوں گا جو ان نکلیوں کے پھنسے ہوئے جو ان کو گرو مان کر کے آپ اوروں کے بیٹھے ہوئے, گرو ہے ہی نہیں, یہ آپ کے سب سے پکے دشمن ہیں جو آپ کو آنے نہیں دینا چاہتے اس بھگوان کے چرنوں میں. ارے بھگوان کہہ رہا ہے چیخ چیخ کر کے آئی ایم گڈ آئی ایم گڈ, اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں ہے تو یہ آپ کی نا سمجھیے. ارے میں کہہ رہا ہوں مائی نیم از راہل اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے تو یہ آپ کی نا سمجھیے میری نہیں. وہ بھگوان چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اور آپ کے لیے ہمارے لیے وہ گالیاں کھا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ان کو سننا پڑ رہا ہے, جیل میں ڈال دیا گیا, اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے پلکیں بچھائے بیٹھا ہوں, میرے بیٹو آ جاؤ آ جاؤ. یہ ماں باپ کے کام ہو سکتے؟ بھگوان ہی اتنا آپ کو پیار کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. جن کو آپ گرو مان کر کے بیٹھے ہو یہ اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے کرے, اور آپ میری بات نہ مانو آپ ان کے دیکھ تو لو رہے, آپ فزکس کا ٹیچر ہو, فزکس کا اس کو پی تک نہیں پتا تو کاہے کا ٹیچر ہے. سیم تھنگ از ٹرو فار یور گروز آلسو. ارے یہ بھگوان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کو یہ تک نہیں پتا وہ کون ہے کہاں ہے کیا رہتا ہے, ان کو ایک اکثر نہیں پتا. آپ کو نہیں وشواس ہوتا آپ دیکھ لو, پچھتاؤ گے. سنت رام پال جی از گوڈ ٹو گوڈ, واسطو میں جس کو بھگوان کہا جائے وہ سنت رام پال جی. اور جو ناستنگ جو نہیں مانتے کہتے بھگوان ہے یا نہیں, وہ بھی آ کر کے دیکھ لو, سامنے بیٹھا ہو سارے جگت کا رچنہار اس بروالا کی پاون بھومی کے اوپر ٹہل رہا ہے, آج دیکھ لو چلے جائیں گے پھر نہیں آئیں گے. ہے بندی چھوڑ, میری سبھی سے پرارتھنا ہے جتنے بھی ورلڈ کے اندر جتنے بھی آزمان و جاتی میں آ کر کے اور بھگوان کے چرنوں میں آ جائے, ان کو سنت نہ لگائیں, یہ سنت ہے ہی نہیں, یہ پرماتما ہے, پرماتما آئے ہوئے اپنے جیون کا کلیان کروا لو, نکلیوں کے مت پھنسو نہ ہی کسی اور چکر میں, بھگوان آئے ہوئے جا کر کے اپنے پتا ہی ہے ہمارے, یہ وہی بھگوان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تو میں ماتا اچھا پتا تو میں, یہ ہے وہ جو لاڈ کرے ہمارے دکھوں کو دور کرے, آ کر کے پیر پکڑ لو اپنے پتا جی کے. یہ بھگوان آئے ہوئے ست لوک آشرم بھروالا ڈسٹرکٹ حصار ہریانہ کے اندر.
دھنیواد بھائی صاحب, بہت بہت دھنیواد.
اپنے آتماؤں یہ ہے شریمد بھگوت گیتا جی کا سار. اب گیتا گیان داتا برم کہتا ہے کہ میری سادھنا چار پرکار کی کرتے ہیں, یہ برم کہتا ہے. برم کی سادھنا بھی چار پرکار کے کرتے ہیں جن میں ارتھارتھی آرت جگیاسو اور گیانی. ارتھارتھی تو جو دھن لابھ کے لیے کوئی انوشٹھان کرتا ہے تو وید منتروں سے ہی کرتا, وہ جے گنیش دیوا ماتا داری پاروتی یہ اس طرح کی آرتی نہیں کرتا. وہ ویکتی کیول ویدوں کے ہی منتروں سے انوشٹھان کرتا اپنے دھن لابھ کے لیے, آرت مانی سنکٹ نوارن کے لیے بھی کوئی سادھنا انوشٹھان کرتا ویدوں کے منتروں سے ہی کرتا ہے. وہ برم اپنے آپ کو برم کا پجاری کہتا جو ہون ہون کرتے رہتے ہیں. اور تیسرا جگیاسو, جگیاسو ہوتا جو بھگوان کے لیے نکلتا ہے, گیان گرہن کرتا کرتا سوئم وکتا بن جاتا ہے, وہ بھی اپنا جیون ناش کر لیتا ہے. اور چوتھا بتایا گیانی. گیانی اس کو کہتے ہیں جس کو یہ پتا ہوا کہ منش جیون بار بار نہیں ملے گا, اور منش جیون کا مول ادیشیہ کیول آتم کلیان کرانا ہے, اور جنم مرتو جب تک نہیں سماپت ہوگی, ذرا مرن کا روگ نہیں کٹے گا تو کوئی فائدہ نہیں اس جیون کا. ان کو یہ بھی گیان ہو جاتا ہے کہ پورن موکس ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا سے نہیں ہوگا, وہ گیانی کہلاتے ہیں. وہ پرمیشور سے پرم اکثر برم سے پورن پرماتما سے ہی سمبھو ہے, اتنا ان کو گیان ہو جاتا ہے. لیکن یہ گیان تو ہو گیا لیکن اس روگ کا ناش کی دعائی ان کے پاس تھی نہیں. یہ تو ان کو پتا لگ گیا کہ دیوتاؤں سے موکس نہیں ہوگا لیکن ہوگا پورن برم سے. انہوں نے غلطی سے آپ نسکرش کر کے یجوروید ادھیا نمبر 40 کے منتر 15 میں دیکھ لیا, اوم کرتو سمر کلبے سمر کرتم سمر وایو انیلم اتیدم بسمانتم شریرم. جیسے گیتا ادھیا نمبر 8 کے سلوک نمبر 13 میں آپ کو دکھا تھا, یہی جو کا تو وہی منتر کا سارانش ہے کہ انتم سانس تک اوم نام کا جاپ کرتے ہوئے جو شریر چھوڑ کر جاتا اس کا امرتم اس اوم سے ہونے والی جو پرم گتی ہے وہ پراپت ہوتی ہے. اس لیے اوم کرتو سمر اوم نام کا جاپ کام کرتے کرتے سمن کرو, وشیش کسک کے ساتھ سمن کرو, اور منش جیون کا مول کرتو جان کر اوم کا سمن کرو. یہ تو ہے اوم کی جانکاری. لیکن کہتے ہیں گرو بن کا ہن پایا گیانا جو تھو تھا بس چھڑے موڈ کسانا, گرو بن بید پڑھے جو پرانی سمجھن سور رہے اگیانی. 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात। इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है, है, है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहां से छपा यहां से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें श्लोक का। ये 4400 अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहां देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने, इसका अर्थ यह है यात एव कार्य का फल आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाला, अन्यत यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया क्योंकि अज्ञानी था, कि एक नंबर का मैं ऋषि दयानंद को आया। इसका अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात, देखो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यह है। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है, 15वां अध्याय, इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथितम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। इसने तक ज्ञान इनके में करना आया था ही, देखिएगा। कर्तो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। इन्होंने लिखा ओम का स्मरण कर, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम कर्तो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा, अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तरह भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है, बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने। इसका अर्थ है कि जब यह शरीर तरह नष्ट होगा, शरीर छोड़कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। अब यहां आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है, और यही वेद बता रहे हैं। देखिए ये 4400 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुद से, ये ज्योति स्वरूप काल तो है, मुद से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण वायुमंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, अहम मैं खम और ब्रह्म, खम माने उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म लोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम वह मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है, मैं खम्भ माने आकाश में ब्रह्मलोक रूपी दिव आकाश में रहता हूं। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना है नहीं, अहम माने में आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये कहना था। ओम ओम सबका रक्षक जो उसका ओम ऐसा नाम जानो ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम उसका क्या था, वो तो गुप्त बता दिया अपना कह अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। अब हो गया सिद्ध, हो अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में आए, उनकी यहां बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं, उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है गुप्त है। इनके समझ में नहीं आया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझ अनुसार रहे अज्ञानी, ये अज्ञानी थे। अब यहां गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनाड़ियों से अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है, यानी ओम नाम से जो परम गति होती है ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा। अन्यों कहें अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने, देखो गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ नहीं कहे सबसे अच्छा, बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ गुड, और यह अनुत्तम कार्य कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को। तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं, 3 तो रिजेक्ट कर दिए अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु, और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, प्रवाह नहीं की जाए मर जाए वेशक नष्ट हो जाए शरीर में भगवान मिलना चाहिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक, देखिएगा श्रीमद भगवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित दयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है, 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको बजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति एक भक्ति ज्ञानी भक्त यह होना चाहिए अति उत्तम है, ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है,